तो जैसा कि हमने कल उद्घाटन सत्र में ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग का उद्घाटन सत्र बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें हमारी वरिष्ठ बहनों ने और भाइयों ने इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी हैं, और हमें उम्मीद है कि जब ये कार्यक्रम समाप्त जब तक होगा, हम बहुत कुछ सीख करके, समझ करके और आत्मसात करके जाएंगे। तो आज पहले तकनीकी सत्र का आगाज करते हैं, और इस तकनीकी सत्र में जो हमारे बीच में स्पेशलिस्ट वक्ता हैं, भ्राता ईवी गिरीश, मैं चाहूंगा कि आप आके अपना मंच पर आसन ग्रहण करें और तत्पश्चात हम स्वागत करें इनका करतल ध्वनि से। भ्राता गिरीश, प्लीज। धन्यवाद। भ्राता ईवी गिरीश का संक्षिप्त परिचय इससे पूर्व कि वो अपने टॉपिक पर आए, आपको देना चाहता हूं। ईवी गिरीश साहब 18 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और लगभग 12 वर्षों से कॉरपोरेट ट्रेनिंग और काउंसलिंग देने का कार्य करते हैं। इन्होंने मैनेजमेंट कर रखा है, जिसमें एमबीए विथ स्पेशलाइजेशन विथ फाइनेंस एंड मार्केटिंग, और रोटेरियन रहे हैं। इससे पूर्व में वो रोटरी क्लब में प्रेसिडेंट भी रहे, और वैसे तो बॉम्बे बेस्ड हैं लेकिन पूरे देश भर में और आसपास के देशों में भी आपने कई कार्यक्रम किए हैं। भारत के बहुत प्रतिष्ठित संस्थान जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, आईआईटी जिसमें चेन्नई, पटना इत्यादि शामिल हैं, टाटा मोटर्स, आईसीएआई, आईसीएसआई, ऐसे कई तकनीकी संस्थाओं में आप प्रशिक्षण कार्य करते हैं। इनकी विशेषता है ये बिहेवियरल ट्रेनिंग, और इसके साथ साथ मनुष्य जीवन में हम अपने संघर्षों को, अपने चैलेंजेस को कैसे सक्सेसफुली मीट करें, इस पर आपने बहुत सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाए हुए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे वैल्यूज इन एजुकेशन, लव द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, हार्मोनी इन रिलेशनशिप, स्लीप मैनेजमेंट, नोइंग द सुप्रीम पावर, पॉजिटिव थिंकिंग, साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, स्पिरिचुअल हेल्थ, ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिस पर भ्राता जी ने देश भर में कई आख्यान दिए हैं। तो ऐसे मूर्धन्य और ऐसे एनर्जी से भरे हुए भाई जी का मैं इस सत्र में स्वागत करता हूं, और सभी आप सभी भी करतल ध्वनि से इनका पुनः स्वागत करें। तो ओवर टू गिरीश भाई जी, और आज की जो टॉपिक है किंडलिंग सेल्फ मोटिवेशन, आप समझ सकते हैं ये पहले ही सत्र में क्यों रखा गया है, क्योंकि हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में, आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में पूरा समय लगाते हैं, पूरा एनर्जी लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी के मन में ये बात रहती है हाउ टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। और चेंज जो उम्मीद हम करते हैं बाहर से, वो हम सभी देखते हैं कि ऑल पीपल आर लैकिंग इन द एनर्जी, एवरीबडी इज वरीड अबाउट द सिस्टम्स। सिस्टम्स को ठीक करने के लिए इंडिविजुअल काम करते हैं, और इंडिविजुअल में सबसे पहला इंडिविजुअल जिसको मैं ठीक कर सकता हूं वो मैं हूं। तो सबसे पहले मैं अपने अंदर इस एनर्जी को कहां से लाऊं, कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखूं, जो मैं जो चेंज देखना चाहता हूं उसका प्रणेता, उसका फाउंडर मैं खुद बनूं, इस टॉपिक को आज के सत्र में हमारे भ्राता जी आपके बीच रखेंगे। तो ओवर टू गिरीश भाई फॉर द सेशन। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू।
ओम शांति। बहुत प्यार से कहें ओम शांति, मुस्कुरा करके कहें ओम शांति, दिल से कहें ओम शांति, नमस्ते, हाथ तो जोड़िए, सॉरी है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का मॉर्निंग गुड है? इज योर मॉर्निंग गुड? क्यों गुड है आपका मॉर्निंग? अच्छा, इतनी अच्छी तरह झूठ बोलते हैं सुबह सुबह, क्योंकि गिरीश भाई जी आए हैं। इसके पहले तो भाई साहब का कभी मॉर्निंग गुड ही नहीं था, ठीक है ना? आपका मॉर्निंग गुड क्यों है? हाँ जी, अच्छा, सुबह सुबह पॉजिटिव थिंकिंग मिला है, अच्छा, ईश्वर परमात्मा के साथ हैं, इसीलिए मॉर्निंग गुड है। मेरा मॉर्निंग भी बहुत गुड है। हम विशेष तौर पर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, गुड नाइट इसीलिए कहते हैं। दो कारण हो सकते हैं। नंबर वन, किसी कारणवश अगर मॉर्निंग गुड नहीं है तो हम गुड बोल बोल के, सोच सोच के, कर करके गुड बनाए। या सेकंड पॉसिबिलिटी है कि गुड है, अगर गुड है तो दूसरों के साथ हम वो गुडनेस को शेयर करें, भाग आपस में बांटें। तो दोनों ही तौर पर हमें गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करना बहुत जरूरी है। आप सबका आज के इस टेक्निकल सेशन में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है किंडलिंग सेल्फ मोटिवेशन। कैसे हम अपने स्व प्रोत्साहन को, अपने अंदर के वो लगन को, अपने अंदर को कुछ कर गुजरने के उस जुनून को किस प्रकार से किंडल करना है, किस प्रकार से उसको बढ़ाना है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये एक चर्चा होगा, मैं आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लोड नहीं करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करें। आप करेंगे मेरे साथ पार्टिसिपेट? आप भी मेरे साथ बातें करेंगे? वंडरफुल। मैं बस एक फैसिलिटेटर के रीति से आपको कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। आपको मेरी कोई भी बात को अग्री करने की जरूरत नहीं है, रादर मैं चाहूंगा कि आप मेरे हर विचार को बहुत अच्छी तरह प्रश्न करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य ना हो या गलत हो, या मेरे कम अनुभव के आधार से मैं कह रहा हूं, आप अपने अनुभव, एक्सपीरियंस, नॉलेज, मैच्योरिटी के लेवल से आप मुझे भी ठीक कर सकते हैं। आपको मुझे करेक्ट करने का प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है? आप लोग मेरे साथ बातें करेंगे? वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई भी ये मान्यता से नहीं है कि हम राइट हैं। हो सकता है आप भी राइट हो। हम यहां पर कुछ चीजों को आगे बढ़ाने का, उस डायलॉग को इवॉल्व करने के लिए हम यहां एकत्रित हुए, राइट? आज के इस विषय को शुरुआत करते हैं। क्या खूब किसी ने कहा है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान घबराता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान घबराता है। मुश्किलों को देखकर मत घबराना मेरे दोस्त, मुश्किलों में अकेले मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है, अकेला गुलाब मुस्कुराता है। ऐसे गुलाब हम बने, और हर विषम परिस्थिति में, हर चैलेंजिंग सिचुएशन में हम मोटिवेटेड रहें, इंस्पायर्ड रहें, इसको आज हम चर्चा थोड़ा सा करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है आज समाज में? जीवन के हर क्षेत्र में हम सब मोटिवेटेड रहना चाहते हैं। क्या कारण है कि हम मोटिवेटेड नहीं हो पाते? क्या ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्या ऐसा सिचुएशन आता है कि हम थोड़े लो फील करते हैं, हम थोड़े घबरा जाते हैं, हम थोड़े डर जाते हैं, हम थोड़ा इनसिक्योर फील कर जाते हैं, हम थोड़ा उमंग उत्साह की कमी हो जाती है, हमारे अंदर का वो जो इंस्पिरेशन है कुछ करने का वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, जैसा चल रहा है वैसा चलने तो कुछ तो रखा नहीं है। क्यों हम ऐसा लो फील करते हैं, हताश हो जाते हैं, क्या कारण है? स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन। कंपैरिजन, हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। सिस्टर, ओ वंडरफुल, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं, इसकी वजह से हम थोड़े से लो फील करते हैं। स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजंस। और बताइए। हाँ जी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हताश फील करता हूं। और बताइए सर, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा लो फील करता हूं। हाँ जी, रिकॉग्निशन नहीं है, अवार्ड नहीं दिया, रिवॉर्ड नहीं दिया, मैंने मेहनत की थी, मैं सच्चा था, मैंने बहुत सिंसियरली काम किया, लेकिन किसी ने मेरे एफर्ट को अक्नॉलेज नहीं किया, उसकी वजह से भी हम थोड़ा सा लो फील करते हैं। फिर करके क्या फायदा है? बहुत अच्छा है, इन सबको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, हम एक दूसरे डायमेंशन में इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं। जिंदगी है तो फिर ख्वाब भी हैं, ख्वाब है तो फिर रास्ते भी हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें भी हैं, मुश्किलें हैं तो बुलंद हौसले भी हैं, और अगर बुलंद हौसले हैं तो ईश्वर पिता परमात्मा कहता है, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये बुलंद हौसले कैसे इन विषम परिस्थितियों में लाना है, इसको आज हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। विशेष तौर पर जो मोटिवेशन है या प्रोत्साहन है, इस संसार में दो प्रकार के होते हैं। आप गेस कर सकते हैं दो प्रकार के मोटिवेशन क्या होते होंगे। एक है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, या फिर एक्सटर्नल मोटिवेटर्स, या बाह्य जगत के मोटिवेटर्स, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं आंतरिक प्रोत्साहन, इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स, या इंटरनल मोटिवेशन जिसको हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। और ये दोनों का इंबैलेंस होने की वजह से ही ओवरऑल हम बहुत ज्यादा जीवन में खुश नहीं हो पाते हैं, प्रोत्साहित किसी कार्य को करने के लिए नहीं हो पाते हैं। दोनों में फर्क है। अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो, आपको संपूर्ण अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार, आपको कंप्लीट फंडामेंटल राइट है, आप कह सकते हैं मिस्टर गिरीश आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मैं अपनी थोड़े से अनुभव के आधार से कह रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली हम सब प्रोग्राम्ड हो चुके हैं सिर्फ एक मोटिवेशन का, और वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स। हम कोई भी कार्य करते हैं ना, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है मिलेगा क्या, प्राप्ति क्या होगा, रिवॉर्ड कितना मिलेगा, फायदा कितना होगा, बेनिफिट कितना होगा, क्यों करूं, क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा तो करता हूं। और ये है एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स। और शायद विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शायद हम माता पिता, हम टीचर्स ही उस बच्चों को इस प्रकार का ट्रेनिंग देते हैं। उदाहरण दूं, और शायद आज 45 साल का गिरीश और हम सब भी, जो बचपन में मेरा प्रोग्रामिंग हुआ था उसी को आज लेकर के जीवन में सफल होने का प्रयास कर रहा हूं। इतना पुराना माइंडसेट को लेकर, इतना पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर वर्तमान परिवेश में मैं जीतने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। अब मैं हूं पुराने जमाने का टेस्ट प्लेयर, मुझे बताया गया है कि तुझे पूरा दिन खेलना है, आज हो गया 2020, बताइए मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अब भैया तुम 2020 अगर खेलना है तो 2020 तक पहले बॉल में छक्का मारो क्रिस गेल की तरह, या फिर युवराज सिंह की तरह 6 बॉल में 6 छक्के मारो। नाउ आई विल हैव टू लर्न और एल्स आई विल पेरिश। तो हम भी शायद ओल्ड जमाने के खिलाड़ी हैं, ओल्ड टेक्निक से खेल रहे हैं, लेकिन वर्तमान जीवन में जीतना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। उदाहरण देता हूं, ये प्रोग्रामिंग होता कैसे है। मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं छोटे बच्चों को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करता हूं, वहां से एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। एक बार घर में स्कूल से छोटू आता है, घर में आते ही साथ क्या करता है, आते ही साथ वो जूता को हाथ से नहीं खोलता, ब्राह्मण है गंदा हो जाएगा हाथ, ठीक है ना, जूता खोलता है, ये वाला जूता इधर, ये वाला जूता इधर, सॉक्स उधर, ट्राउजर इधर, शर्ट इधर, बचे कुछ ड्रेस में, आते ही साथ पता है क्या करता है, छोटा भीम। ये मम्मा लोग है ना छोटा भीम से बहुत परेशान है, क्योंकि 7 साल से देख रही हूं छोटा भीम अभी भी छोटा ही है, इंतजार कर रही हूं कब बड़ा होगा, मुक्ति मिलेगा मेरे छोटू को टीवी से, मेरा छोटू बड़ा हो जाएगा लेकिन छोटा भीम कभी बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। सवाल पूछूं, किसके लिए ताली बजा रहे हैं, छोटा भीम के लिए या छोटू के लिए, मम्मी के लिए, खुद के लिए या मेरे लिए? ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ताली क्यों बजा रहे, किसके लिए बजा रहे वो भी बता दीजिएगा। मेरे लिए, क्या बात है, थैंक यू, आप इतने अच्छे ऑडियंस हैं, ऐसे बजाते रहिएगा, ठीक है ना, बिना मतलब के भी बजाएंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा मेरे लिए बजा रहे, ठीक है, थैंक यू सो मच। बेचारी मम्मी जो है परेशान हो गई है, मम्मा कह कह के थक गई, बेबी प्लीज हाथ पैर मुंह धोकर, ड्रेस पहनकर, खाना खाकर, थोड़ा रेस्ट करके, होमवर्क करके, तेरे को जितना टीवी देखना है तू देख लेना, पता है रिस्पॉन्स, उसको तो सुनाई तक नहीं दे रहा है, उसका तो हार्ट माइंड बॉडी सोल छोटू छोटा भीम के अंदर है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक बार मम्मा कहती है, दो बार मम्मा कहती है, तीन चार पांच, आधा घंटे के बाद जब छोटू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मम्मा क्या करती पता है, ब्रह्मास्त्र निकालती है, गारंटीड टारगेट अचीव होगा, ब्रह्मास्त्र है भैया, अंत लास्ट एफर्ट, मम्मा ब्रह्मास्त्र क्या निकालती है पता है, और ये है वो मोटिवेशन, मम्मा छोटू को कहती है, किचन से कह रही है चिल्ला के, छोटू बेबी तू तो मेरा डार्लिंग बेबी है ना, अच्छा बच्चा है ना, स्वीट बेबी है ना, आंखों का तारा है ना, अगर तू टीवी बंद करके हाथ पैर मुंह धोकर खाना खाएगा ना, तो मम्मा तेरे को रात को आइसक्रीम खिलाएगी। ये सुनाई दे देता है, अभी तक बाकी कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, पता है छोटू टीवी देखते देखते क्या कहता है, चॉकलेट फ्लेवर, हाँ मतलब अग्रीमेंट साइंड कंडीशन फेल्ट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पहला मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मम्मा को खुशी होती, अच्छा कम से कम ये टीवी तो बंद करेगा, मम्मा बोलती अच्छा टीवी तो बंद कर, करता हूं ना, इमीडिएटली भी नहीं करेगा, आधा घंटे के बाद ही करेगा। दूसरा दिन वनीला फ्लेवर, तीसरा दिन मैंगो फ्लेवर, चौथा दिन केक, पांचवा दिन चॉकलेट, छठवा दिन पानीपुरी, सातवां दिन भेलपुरी, आठवां दिन सेवपुरी, नवा दिन पूरी पूरी, दसवां दिन पानी पानी। अब कितना देगी, कितना खिलाएगी वैरायटी, अब हमें पानी पानी में आ जाती है। तब तक हम छोटे बच्चों को या फिर उस छोटे बच्चे के यहां पर एक प्रोग्रामिंग आ जाता है, और वो प्रोग्रामिंग क्या है पता है, इफ यू वॉन्ट मी टू स्टडी वॉट विल आई गेट, अगर आप चाहते हो कि मैं टीवी बंद करूं तो मुझे क्या मिलेगा, और ये मुझे क्या मिलेगा, आज 45 साल का गिरीश भी जीवन के हर प्रोसेस को अवार्ड रिवॉर्ड बेनिफिट आउटकम रिजल्ट के आधार से करता है, क्यों करूं, मिलेगा क्या पहले बताइए, फायदा क्या, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे हमारा शारीरिक हेल्थ हो, हम हर चीज में फायदा के आधार से अपने कर्म को निर्धारित करते हैं। और इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स जो होता है वो एक हायर डायमेंशन में होता है, जो ईश्वर पिता परमात्मा ने हम बच्चों को सिखाया, आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट, आई डू इट बिकॉज आई लव इट, I do it because it's interesting to me. I do it because it gives me a meaning to my existence. वो मुझे मेरे अस्तित्व की पहचान देता है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसीलिए करता हूं क्योंकि मुझे मजा आता है, मैं इसीलिए करता हूं क्योंकि मैं वो जो कर रहा हूं उसको मैं एकदम अपने आत्म स्वरूप में आकर के, that gives me मेरे जीवन का अस्तित्व को define करता है, मुझे मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है, प्राप्ति नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। जो एक्सटर्नल मोटिवेटर्स होते हैं वो एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं, और जो इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं वो प्रोसेस को फोकस करते हैं। और क्योंकि हम प्रोसेस को फोकस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम जीवन में थोड़े से दुखी हो जाते हैं। जितने भी कारण आपने बताए कि हमको स्ट्रेस होता है, टाइम नहीं है, एक्सपेक्टेशन है, किसी की तबीयत खराब है, ये सब के कारण कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई हमें हमारे कार्य का रिकॉग्निशन नहीं देता है, ये सब एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स है। मैं आपको बस एक स्टडी बताता हूं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आप अगर मुझसे पर्सनली मिलेंगे तो मैं आपको वो लिंक दूंगा जहां पर आप जाकर के ये चेक कर सकते हैं। 40 साल का रिसर्च लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नोबल लॉरिएट्स जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के हैं, 40 साल उन्होंने रिसर्च किया। वो रिसर्च मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के बच्चों पर उन्होंने ये मोटिवेशन को एक्सपेरिमेंट किया, और 40 साल का रिजल्ट आज वो क्या कहते हैं पता है? वही संस्था, वही परिवार, वही व्यक्ति, वही देश, वही समाज आने वाले समय पर सर्वाइव करेगा, प्रगति करेगा, जो इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता है। इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स माना मुझे अच्छा लगता है मैं जो कर रहा हूं, मुझे मजा आता है, आई लव इट। मेहनत से, जबरदस्ती से, पैसों के लिए, प्रमोशन के लिए, कुर्सी के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं। और कंपनीज लाइक गूगल एंड एप्पल आज उस फिलॉसफी को वो बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट कर रहे हैं। और तीन मुख्य जो बातें हैं वो कहते हैं, फ्रीडम एट वर्क, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं पैशनेट होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को हम एक ऐसा एनवायरमेंट दे सके जहां वो बहुत नशे से वो कार्य कर रहा, वो संस्था बहुत आगे बढ़ सकता है। एंड उसमें वो एक्सपर्टाइज आना चाहिए, अंदर से वो लगन आनी चाहिए, कल जो मैं कर रहा था उसको मैं और बेहतर तरीके से आज करूं, परसों और बेहतर तरीके से करूं, मैं एक्सपर्ट हो जाऊं एक कार्य में, प्रमोशन के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए नहीं, वो तो सेकेंडरी है, आप क्या चाहते हो वो आपके पीछे घुटने टेक करके आ जाएगा। तो प्रश्न ये है, क्या मैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन को प्राथमिकता दे सकता हूं रादर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को? मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मैं एक कंपनी में, टाटा इंडिकॉम, अगर आपने नाम सुना हो, हम मुंबई में उनके जो HR मैनेजर थे उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि आप हमारे लोगों को ट्रेनिंग दीजिएगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने कुछ ऑफिसर्स को, जो टीम लीडर्स होते, उनको मुझे मेरे सामने बिठाकर बोला, इनसे समझ लीजिए कि ट्रेनिंग की आवश्यकता किस क्षेत्र में है, और गिरीश भाई आप जाकर ट्रेनिंग कराइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ जब मीटिंग करने लगा, किस विषय पे आपको लीडरशिप पे ट्रेनिंग चाहिए, मोटिवेशन पे चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे चाहिए, पता होना चाहिए ना उनको क्या जरूरत है। तो जब हम उनसे बात कर रहे थे तो एक टीम लीडर ने मुझसे क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, गिरीश सर, मेरे जो अंडर पे मान लीजिए 10 लोग काम करते हैं, और वो बहुत लगन से उन्होंने काम किया है, प्रोजेक्ट को शेड्यूल के पहले कंप्लीट कर दिया, दिन रात वो सोए नहीं, तीन तीन दिन तक तो वो घर में भी नहीं गए क्योंकि हमको बहुत प्रेशर था, और मेरे ये 10 लोगों ने बहुत मेहनत करके, जी जान लगाकर, क्लाइंट भी खुश, मेरे टॉप टीम भी खुश, हम लोग सब बहुत, हम लोगों ने कंप्लीट किया टाइम पर, हमने बहुत एंजॉय भी किया। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम क्या है? तो वो जो टीम लीड कहता है, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आई, किसने कितना अच्छा काम किया उसके बेसिस पे उनको क्या बोलते हैं बेनिफिट्स मिलता है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या हुआ? तो ये टीम लीड कहता है, मैंने 10 लोगों के लिए बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया कि ये 10 के 10 लोगों ने बहुत मेहनत की, सबको अच्छा प्रमोशन मिलना चाहिए, सबको 40% इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, द बेस्ट इंक्रीमेंट इनको देना है। ऊपर से मेल आता है, सॉरी दिस टाइम नॉट पॉसिबल, ओनली 2 to be promoted। तो मैंने कहा फिर क्या किया आपने? तो ये टीम लीड कहता है, मैंने वापस लंबा चौड़ा 50 पेज का मेल भेजा, एक एक व्यक्ति ने क्या किया है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन, उसने क्या त्याग, क्या तपस्या, वो नहीं होता था तो आपका प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं होता था, आपका क्लाइंट आपके सर पे चढ़ जाता था, बहुत सारी बातें, मतलब सब्सटैंशिएट करने के लिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इन्होंने कितनी मेहनत की कंपनी के लिए, सबके बारे में मैंने लिखकर भेजा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला एक लाइन का मैसेज आया, सॉरी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, 2 to be promoted, नेक्स्ट टाइम विल कंसिडर। मैंने कहा फिर? तो ये भाई कहता है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी जेब से तो किसी को प्रमोट नहीं कर सकता हूं, मैंने वो 10 लोगों में से जो सबसे बेस्ट, वैसे तो 19-20 का भी फर्क नहीं था, फिर भी उनमें से 1-2 को प्रमोशन दे दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखना क्या असर होता है हमारे साइकी पे। सवाल पूछो, अगर वो बाकी 8 लोग में गिरीश भी होता तो मैं क्या सोचता पता है? दूसरा दिन जब मैं आता था कंपनी में काम करने के लिए, तो मेरा मन की जो स्थिति होती थी वो ये होती थी, कल से आऊंगा टाइम पे, जाऊंगा भी टाइम पे, कंपनी जाए तेल लेने के लिए।
क्या फायदा इतना करके, कुछ मिला तो है नहीं ना, कुछ दिया तो नहीं ना उन्होंने, बेवकूफ बनाते हैं लोग।
अच्छा, मुझे नहीं पता कंपनी का क्या हाल होगा, लेकिन एक चीज का गारंटी है, गिरीश का बेहाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल से गिरीश अपनी कॉम्पिटेंसी, अपना स्किल, अपनी जो विशेषताएं हैं उसको कम उपयोग करना शुरू करेगा, क्योंकि करना ही नहीं है मुझे, क्योंकि मिला क्या, कंपनी ने नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन अब मैं अपने भविष्य को गलत दिशा में लेकर जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं कुछ करना ही नहीं चाहता हूं। अब जब मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूं, तो कल की डेट में जिस प्रकार का मुझे डेवलपमेंट चाहिए, जिस प्रकार से मेरा दिमाग काम करना चाहिए, जिस प्रकार से मेरा दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए, जिस प्रकार से मेरा बुद्धि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, उन सब में मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि करना ही नहीं है मुझे कुछ। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मिला ही नहीं है। इस संसार में जितने भी सफल लोग होकर गए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उन सब का एक कॉमन आधार था, दे वर ऑल ड्रिवन बाय इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स। और तब जाकर के वो विश्व में विख्यात हो गए, नॉट बिकॉज किसी ने उन्हें रिकॉग्नाइज करना है या उनको अवार्ड मिला, वो सब तो सेकेंडरी है, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम विशेष तौर पर आज इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स को समझने का प्रयास करेंगे। करें इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स, या इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स ज्यादा पावरफुल होता है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स? इंट्रिंसिक। जीवन में सफल होने के लिए मैं 3 ऑप्शंस आपको देता हूं, प्लीज बताइएगा इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल, सबसे ज्यादा अहम भूमिका कौन निभाएगा? नंबर 1, अच्छा बॉडी। नंबर 2, अच्छा इंटेलेक्ट, अच्छा क्या बोलते, पद, पैसे, संपत्ति। नंबर 3, एक अच्छा मन, एक क्रिएटिव मन, एक मोटिवेटेड मन, एक कॉन्फिडेंट मन, एक कॉन्फिडेंट सेल्फ। प्लीज बताइए तीनों में कौन सा रहेगा? तीसरा, आप है ना बहुत अच्छे ऑडियंस है, सब जानते हैं, ठीक है। माताएं क्यों हंस रहे हैं? इनकी हंसी थोड़ा सा सार्कास्टिक लग रहा, ताली नहीं बजाना, लेकिन मेरे को लगेगा मेरे लिए बजा रहे, ठीक है। और दिस इज इंटरेस्टिंग। प्रॉब्लम क्या है पता है मनुष्य का? मुझे सब पता है, करता कुछ नहीं। ऐसे किसी का अपमान नहीं करते भाई साहब, ठीक है ना। मैंने कहा मेरे को सब पता, करता नहीं, ताली बजा रहे जोर से, ठीक है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, गुड। हमें सब पता है, तो प्लीज बताइए तीनों में सबसे कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल कौन सा होगा? हमारा मन। सवाल पूछूं, इसके लिए तो फेयर एंड लवली बहुत लगाया, रगड़ रगड़ के अच्छा दिखने के लिए, वो उसको प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए भी बहुत मेहनत की, ये जानते हुए भी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्रश्न, इसको प्रज्वलित बनाने के लिए, इसको शक्तिशाली बनाने के लिए, इसको स्वच्छ बनाने के लिए क्या किया? यही प्रॉब्लम है, हम करते कुछ नहीं है लेकिन जानते सब कुछ है। और कुछ माताएं तो बोल रही हैं, टाइम कहां है, इसमें और उसमें इतना टाइम निकल गया कि तीसरे के लिए बचा ही नहीं है, ठीक है। अब कितना कुछ करेंगे, ठीक है, अगले जन्म में सोचेंगे, प्रज्वलित मन तेरे जैसा हम बना लेंगे, ठीक है ना, इस जन्म में तो पॉसिबल है। इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स को समझने का प्रयास करें। चलिए, इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स या फिर जो मोटिवेशन होता है, प्राइमरली 3 उसके आधार होते हैं, 3 उसके फैक्टर्स होते हैं, तीनों को हम समझने का प्रयास करें। नंबर 1, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी माना हाउ हार्ड वन ट्राइज, कितना उसमें जुनून है वो करने की, कुछ प्राप्ति के लिए नहीं, क्योंकि उसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसको मजा आता है, क्योंकि वो करते हुए उसको लगता है कि मैं जीवन जी रहा हूं। सिंपल सा उदाहरण देता हूं, हम सब काम करते हैं, हम सब नौकरी करते हैं, मोस्ट ऑफ अस। गिरीश भाई 20 साल की उम्र से नौकरी करना शुरू करेगा, 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी करेगा, 30, 40, 50, 60, 40 साल गिरीश भाई क्या करेगा? काम करेगा। बिजनेस में भी हम काम करते हैं, नौकरी में भी हम काम करते हैं। व्हाट विल आई डू फॉर 40 इयर्स? वर्क, ठीक है ना, हम काम करेंगे। 40 साल में 5 साल माइनस कर देता हूं, ईएल, पीएल, सीएल, दशहरा, दीपावली, मेडिकल लीव, ठीक है ना, वो सब, क्रिसमस, ईद, होली, सब माइनस कर देते हैं, 5 साल माइनस कर देता हूं। मतलब गिरीश भाई 35 साल × 365 दिन क्या करेगा? काम करेगा, उसमें भी 12 घंटे एवरेज। जैसे जैसे मैं सीनियर पोजीशन में जाऊंगा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट एवरेज में लेता हूं 12 घंटे। तो गिरीश भाई 35 × 365 दिन × 12 घंटे इज इक्वल टू इतने घंटे क्या करेगा? काम करेगा। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक भारतीय व्यक्ति का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना होता है? 70 साल। 70 साल गिरीश भाई जिएगा, उसमें 35 का 12 घंटे क्या करेगा? काम करेगा। प्रश्न पूछूं, जिएगा कब? When will I live? हम तो काम कर रहे हैं, हमने काम को और जीवन को ना सेपरेट कर दिया है। और जो इंट्रेंसिक मोटिवेटर्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर 24 साल क्रिकेट खेलकर काम नहीं किया, वो जीता है या जीता था जब क्रिकेट खेलता है। लता मंगेशकर जब काम करती है, गीत गाती है तो जीती है। अमिताभ बच्चन जब एक्टिंग करता है तो जीता है। आप यहां पर जितने भी सेवाधारियों को देख ले, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो जीते, उनको बहुत नशा आता है, वो जबरदस्ती पूछते सेवा बताइए, सेवा बताइए, उनको नशा रहता है। एंड वेयर इज इट इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स? क्या मिल जाएगा, क्या प्राप्ति करना है? प्राप्ति के चक्कर में खुशी गायब, प्राप्ति के चक्कर में जीवन गायब, प्राप्ति के चक्कर में मजा गायब, वो नहीं होना चाहिए। सो द फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट वी कॉल इट एज इंटेंसिटी, हमारे में कितना लगन है वो चीज करने का। लेकिन आप बोलेंगे हमको तो अच्छा ही नहीं लगता जो हम कर रहे हैं, मजा ही नहीं आता है, कैसे खुश रहे हमेशा, कैसे आनंदित रहे हमेशा। लेकिन करना तो पड़ेगा। हमारे जीवन में सिर्फ दो ही चॉइस है। चॉइस नंबर वन, या तो खुश रहो। तीसरा कोई चॉइस है? ये माताएं मुझे ना बहुत घूर घूर के देख रही है, पता है क्यों देख रही है? वो बोलती है, मुझसे कह रही है, टकलू तो इतना देर से भाषण कर रहा है ना, हमारे घर आ जा, सासू मां के दर्शन करेगा ना तो तेरी शांति भंग हो जाएगी, आप बता कैसे हैंडल करेगा। भाई लोग लगता पीड़ित ज्यादा, ताली ये ज्यादा बजा रहे, ताली क्यों बजा रहे, किसके लिए बजा रहे ताली? उनके लिए क्या? कुछ माताएं ये भी सोच रहे, हमारे घर में आ जा, हमारे दो बच्चों को हैंडल करके बता, तेरा इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स कहां पर है, तू कितना लगन है तेरे को उनको संभालने के लिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं, क्या बात है, इतनी अच्छी माताएं। गुड, इंटेंसिटी को समझने का प्रयास करें, हाउ हार्ड वन ट्राइज, उसको कितना नशा है वो चीज करने का। अंग्रेजी में कहावत है, डू वॉट यू लव टू डू, डू वॉट यू लव टू डू, इन केस नॉट पॉसिबल। अब जीवन इतना मेहरबान तो नहीं है गिरीश भाई के पास, जो मुझे अच्छा लगे वही करने का मौका मिले, राइट? हमारे में भी ऐसे बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है जो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना तो पड़ता है ना, घर की जिम्मेवारियां हैं, समाज की जिम्मेवारियां, करना तो पड़ता ही है। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं, डू वॉट यू लव टू डू इन केस नॉट पॉसिबल, अगर नहीं संभव हो रहा है तो स्टार्ट लविंग वॉट एवर यू आर डूइंग। तो जो कर रहे हो, और चॉइस भी क्या है, दो ही चॉइस है, या तो मर मर के करो, दुखी होकर के करो, या फिर करें इंट्रेंसिक मोटिवेटर्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज, दोनों उंगलियां ऐसे करिए, वेरी गुड। हाँ भाई साहब, इतना दूर नहीं, इतना यहां पे, हाँ नजदीक, छाती के नजदीक, राइट, बहुत अच्छा, दोनों हाथ से करिए, ठीक है ना। अब दोनों हाथों को ओठों के किनारे रखें, ओंठों के किनारे रखें, वेरी गुड, दोनों हाथ से, एक भाई साहब तो दूसरा हाथ ऐसे करें, मेरे हाथ में माइक है, ठीक है ना, ताली क्यों बजाया
हर मेरे लिए, क्या बात, दोनों हाथ की उंगलियों को यहां रखा, ऊपर की ओर धक्का मारिए,
ऊपर ऊपर पुश करिए, वेरी गुड, चेहरे को ऐसे ही रखकर दोनों हाथ को नीचे रख दीजिए, चेहरा चेहरा ऐसे ही, हाथ नीचे भाई साहब, हाथ नीचे, चेहरा ऐसे ही, वेरी गुड, चेहरा ऐसे ही, क्या लग रहे हैं आप चेहरा ऐसे ही रखिएगा। छोटा सा निवेदन है, पहला इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स, कल सुबह के 11 बजे तक ऐसे ही रहना, यहां से ऐसे जाना, हो सकता है, पॉसिबल है, मान लीजिए आप अपने होम टाउन में, जहां से भी आप आए हैं भारत के अनेक स्थानों से, और ये आप अपने चॉइस के आधार पे कर रहे हैं, ये करने से कोई प्राप्ति अप्ति नहीं है, प्राप्ति में बताऊंगा कैसा रियल प्राप्ति हो सकता है, वस्तु वैभव वाला प्राप्ति नहीं है, रियल प्राप्ति। ऐसा जब आप करेंगे तो आपको दो कंडीशन देता हूं, ठीक है, ये है इंट्रिंसिक, दो ही चॉइस है और तो कुछ कर नहीं सकते, या तो रोइए या फिर खुश रहिए। मान लीजिए आप अपने स्थान पर हैं, दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में, कोलकाता में, जहां से भी आप आए, साउथ इंडिया से आए, आप गाड़ी चला रहे हैं, बिजी ट्रैफिक शेड्यूल है, ट्रैफिक है, और आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आपको थोड़ी जल्दी है, वो जल्दी के चक्कर में आप भी गाड़ी तेज चला रहे, सबको जल्दी होती है, पीछे से दूसरे गाड़ी ने आके आपको टक्कर मार दी, रोड ट्रांसपोर्ट वाले एक्सीडेंट तो होता है, तो जैसे ही आपकी गाड़ी को पीछे से आके उसने टक्कर मारी, ऐसे करके गाड़ी से उतरना और पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना और उसको मुस्कुराते हुए कहना, भैया क्या टक्कर मारी है, आ हा हा। क्लाइमैक्स बताऊं, फिर उसको कहना मुस्कुराते हुए, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, पूरा वसूल करूंगा, जितना, प्रश्न पूछूं, गुस्सा क्यों करते हैं, इरिटेट क्यों होते हैं, फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं, गाली क्यों देते हैं, परेशान क्यों होते हैं, उससे ज्यादा वसूली हो जाएगा क्या, उससे वो डर जाएगा क्या, और डर के बाद वो आपको 5,000 का नुकसान का 10,000 दे देगा क्या, क्यों हम ऐसा करते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप पूछ सकते हैं, गिरीश भाई ऐसा करके प्यार से बोलने से ज्यादा वसूली हो जाएगा क्या, वो भी मुझे नहीं पता, शांति से, आनंद से, प्यार से, अदब से, इन कंट्रोल हो करके उसको बोलने से भी पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरा देगा या नहीं देगा। उनको कहना, बहुत प्यार से कहना, भैया आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, पूरा वसूल करूंगा, रिपोर्ट लिखाऊंगा, पुलिस कंप्लेंट करूंगा, इंश्योरेंस का भी क्लेम करूंगा, आपको यहां से लेकर जाऊंगा पुलिस स्टेशन, सब करने के बाद तेरे को यहां कर वापस ड्रॉप करूंगा, रिटर्न जर्नी में 10 रुपए की चाय भी पिलाऊंगा, चले। ऐसा करने से एक फायदा है फ्रेंड्स, पता है क्या फायदा है, हार्ट अटैक नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ेगा, और जितना मैं इरिटेटेड होऊंगा, हो सकता है बहुत छोटा सा नुकसान हो सकता है आगे वाले जर्नी में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बताइए, मैं सुरक्षित हूं या फिर रिस्क मैंने अपने जीवन में ले लिया है, पॉसिबल है, करेंगे, हाँ जी, उनको भी मुस्कुरा के कहना, हाँ वो तो ठीक है ना, उनको साइड में गाड़ी लगाना, हर चीज का सोल्यूशन है, बट स्थिति, मोटिवेशन क्या है आपका, वो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मन की स्थिति क्या है। और उदाहरण दूं, जब आप ऐसा करेंगे घर में 24 घंटे, सबसे पहले आपके घर वाले आपको बोलेंगे, मम्मी कुछ तो प्रॉब्लम नजर आ रहा है, आप माउंट आबू जाने के पहले तो कुछ अलग थे, जब से आई है माउंट आबू से मैं देख रहा हूं खुश हो रही है, जाने के पहले तक एक ही ढीला था, लगता है वह दूसरा भी, अब किसके लिए ताली बजाया, मेरे लिए, अपने लिए, वेरी गुड, ये अच्छा था, लगता है वहां से आने के बाद वहां पे उन वादियों में दूसरा भी गिर गया,
कुछ तो भी गड़बड़, तबीयत ठीक है क्या?
तब आप उनको कहना, नहीं नहीं, हम आध्यात्मिक बन चुके हैं, हम पावरफुल बन चुके हैं, हम सफल हो चुके हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स हैं, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आई लव इट, क्योंकि मुझे मजा आता है, क्योंकि इट गिव्स मी द मीनिंग ऑफ माय एग्जिस्टेंस। आपके बच्चे और आपके घर वाले बोलेंगे, बार बार जाते रहना, आपके खुश रहने से, आपके आनंदित रहने से फायदा। नहीं तो पता नहीं कैसे कैसे चेहरा लेकर आते थे। कितना फायदा है दोस्तों, क्यों हम घर परिवार में रहते हैं? आनंद के लिए ना, एक दूसरे को देखकर जीवन का सुख अनुभव करने के लिए ना, बस वही नहीं है, बाकी सब है, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, पत्नी भी है, सासू मां भी है, सब लोग हैं, खुशी नहीं है। वो खुशी फॉर नो रीजन, बिकॉज इट्स माई चॉइस, बिकॉज आई लव इट, बिकॉज मैं उसका स्वरूप हूं। और वो कितना इंटेंसिटी के साथ आप करने वाले हैं, हाउ हार्ड आई ट्राई, वो करना पड़ेगा, हो सकता है परिस्थितियां आएंगी। देखें इंटेंसिटी को, देखने का प्रयास करें। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, ठीक है? तीन बातों के लिए मैं आपको तीन वीडियो दिखाऊंगा और उसके आधार से हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो इंटेंसिटी को दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो आंतरिक शक्तियां हैं, आज सुबह के सत्र में आपने इसको समझने का प्रयास किया, और वो है मैं आत्मा, शरीर नहीं, ये भी एक्सटर्नल है फ्रेंड्स। आत्मा आत्मा के निहित शक्तियों को उजागर करें। आपको एक उदाहरण देता हूं, ये सत्य घटना है, आप शायद इसको जानते भी होंगे, और अगर समय मिलेगा तो मैं उसको दिखाने का भी प्रयास करूंगा। 26 साल की ये महिला, सन 2011 की बात है, नेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में रहने वाली ये महिला रात का ट्रेन पकड़ के नोएडा जा रही थी दिल्ली में खेलने के लिए, इन वन ऑफ द स्पोर्ट। रात को 10:30 बजे जब ट्रेन बरेली के नजदीक पहुंचता है तो उसके कंपार्टमेंट में चार लड़के घुसते हैं, और ये बहुत अच्छे बच्चे नहीं होते, और वो सबका चेन खींचने का प्रयास करते हैं। और ये महिला बहुत साधारण परिवार से है, उसके गले में एक छोटा सा पतला सा सोने का हार था, और जैसे ही वो लड़का उसको खींचने का प्रयास करता है, ये जो महिला होती है ये उसका हाथ पकड़ लेती है, वो उसका कॉलर पकड़ता है, ये महिला भी उसका कॉलर पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स के फील्ड में वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते, फाइट तो देंगे ही देंगे, क्योंकि ये अन्याय है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। और किसी में इतना ताकत नहीं था, लेकिन ये स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होने की वजह से इसमें थोड़ा सा शारीरिक ताकत भी था, मानसिक भी था, वो भी उसका कॉलर पकड़ लेती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चारों के चारों जो नवयुवक होते वो भारी पड़ जाते इस महिला पे, 4:1 क्या कर सकती है। वो चारों लड़के उसको उठाकर लेकर जाते हैं, वो जो दरवाजा का एरिया होता है ना ट्रेन में, टॉयलेट एरिया में, वहां लेकर जाते हैं। दो लड़के उसका हाथ पीछे से पकड़ लेते हैं, एक लड़का उसका बहुत प्यार से गोल्डन चेन खींचता है, चौथा लड़का उसी समय उसके पेट में लात मारता है। एंड वाइल शी इज बीइंग किक्ड, आई मीन एज लक वुड हैव हैड इट, अब आप बोलेंगे गिरीश भाई आप गलत शब्द का इस्तेमाल करो, लक की क्या बात है, तो दुर्भाग्य है, ये तो ग्रॉस इनह्यूमेन है, ये तो अन्याय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एज लक वुड हैव हैड इट, जब वो चौथा लड़का उसके पेट में लात मारता है तो वो जो पीछे दो लड़के होते हैं वो क्या करते पता है, वो हाथ पकड़े जो होते हैं ना, वो जब उसको लात मारते हैं उस लात के फोर्स से वो पीछे के दो लड़के उसको हाथ जो पकड़े उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। शी इज लिटरली थ्रोन आउट ऑफ अ रनिंग ट्रेन, एज लक वुड हैव हैड इट, दूसरी डायरेक्शन से एक और ट्रेन आ रही थी, उससे जाके टकराती है। क्या आप सोच सकते हैं क्या हालत हुआ होगा एक एक महिला के साथ, उसका बॉडी का स्पीड इज इक्वलेंट टू द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आप उस स्पीड में गिर रहे हो और दूसरी तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन से, इंपैक्ट वॉज सो सिवियर, विद इन नो टाइम, पता नहीं विद इन सेकेंड उसके साथ क्या होगा, उसको समझ में ही नहीं आया मैंने क्या कर दिया था, मैंने सर क्या महापाप किया जिसकी वजह से मेरी ये दुर्दशा होने वाली है। और ये घटना करीब करीब 10:30 बजे होती है, 11:30, 12:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 9 घंटे के बाद गांव वाले देखते हैं दो रेलवे ट्रैक के बीच में एक शव पड़ा हुआ है, वहां जाकर के उसको एग्जामिन करते हैं देखने के लिए कि क्या है। अनफॉर्चुनेटली उनको पता चलता है उसकी सांसें अभी भी चल रही है, ओह माय गॉड, शरीर छोड़ा नहीं है इसने। रात भर ये महिला चिल्लाती रही, एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन रेलवेज 9 घंटे में 49 स्पीडिंग ट्रेन वेंट बाय। हर बार जब एक स्पीड ट्रेन जाता था, आप भले जानते होंगे मुझसे कितना आवाज आता है, कितना उसका वो जो स्लैब हिलता है एक स्पीडिंग ट्रेन जब जाता है, जब वो जाता था तो उस आवाज से, उस गर्जना से उसको होश आता था, वो चिल्लाती थी
लेकिन किसी के कानों में नहीं पड़ा। रात भर वो चूहे ने उसके कटे हुए पांव को काटा, कुतरा उसके जहां जहां उसको शरीर था, उसके खून को चूसा, ये कुछ नहीं कर पाया। इसके स्पाइन को प्रॉब्लम हो गया था, एक पांव पांव घुटनों के नीचे कट चुका था, टू पीसेस। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, वहां पर एनेस्थेटिस्ट ही नहीं है। वो कहती है, डॉक्टर साहब मैं 9 घंटे सर्वाइव कर चुकी हूं, मुझे एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, मैं मर जाऊंगी, आई विल ब्लीड टू डेथ प्लीज। ये खबर फैल जाती है, भारत की सरकार, मीडिया, ऑपोजिशन, यू नो, नारी सुरक्षा, नारी उत्थान, उस चक्कर में उसको इमीडिएटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली में लेकर जाया जाता है। वहां पर उसका ट्रीटमेंट चलता है। भारत सरकार का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मीडिया ब्रीफिंग करता है और कहता है वो महिला गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, नथिंग हैपेंड। उसमें हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, उसने टिकट नहीं लिया था, और जब टीसी आया टिकट पूछने के लिए तो वो खुद कूद गई, सुसाइड अटेम्प्ट किया। दोस्तों उस स्थान पर अगर मैं होता था ना, तो कम से कम एक खून तो माफ था, कम से कम आप मुझे सहानुभूति नहीं तो झूठ तो नहीं बोलो ना, लोगों को गुमराह तो नहीं करो ना, सच बोलिए ना। फिर भी भारत सरकार ने कहा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, बिकॉज महिला के साथ ऐसा हुआ है, वी ऑफर 25,000 रुपीज। पता है महिला ने क्या कहा, देखना हाँ, आंतरिक प्रोत्साहन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। उसने कहा भिखारी नहीं हूं, नहीं चाहिए आपके 25,000 रुपए। 2 साल के अंदर 21 मई सन 2013 अरुणिमा सिन्हा 26 साल की ये महिला विश्व की प्रथम महिला बनी। इस संसार की कोई महिला ने आज तक नहीं किया, अमेरिका की कोई महिला ने नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया की कोई महिला ने नहीं किया, यूरोपियन यूनियन की कोई महिला, अपाहिज महिला ने नहीं किया। मैं इन कंट्रीज का क्यों नाम गिना रहा हूं, वहां ऐसा कुछ होता है ना तो सरकार पूरा खर्चा उठा लेती है। भारत के 127 करोड़ की संख्या जनसंख्या में कौन क्या कर रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसी को पता नहीं है फ्रेंड्स। ऐसे परिवेश में अरुणिमा सिन्हा गोज ऑन टू बिकम द फर्स्ट विमेन एम्प्यूटी, जिसका पांव नहीं, अपाहिज महिला, हु स्केल्स, हु टचेस 8,848 meters, माउंट एवरेस्ट पे भारत का तिरंगा लगाती है फ्रेंड्स। वो विश्व की प्रथम महिला बनती है। मैं क्यों ये आपको बता रहा हूं, मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि ये महिला के पास मनी पावर नहीं है, इस महिला के पास मसल पावर नहीं है, ये महिला के पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, ये महिला के पास नेटवर्किंग पावर नहीं था, ये महिला के पास अंग्रेजी नहीं आती, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ये महिला के पास एजुकेशन का पावर नहीं था फ्रेंड्स। लेकिन एक पावर था जो ईश्वर हम बच्चों को आके बता रहा है, इन शक्ति का इस्तेमाल करो, ये सब होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके पीछे ये एक्सटर्नल है। बस एक पावर वो महिला ने यूज किया, जिसको वो कहती है विल पावर, मेरी इच्छा शक्ति, एंड दैट इंटेंसिटी, हाउ हार्ड आई ट्राई। और अगर वो अंदर, मेरे अंदर ये जुनून है कि आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, आज से लेकर मरते दम तक 24 घंटे 365 दिन मुस्कुराते रहूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, फुल स्टॉप। करेंगे पक्का, घर जाएंगे, घर में रात को डिनर पे बैठेंगे, पता चला मैडम ने करेले की सब्जी, मुस्कुराकर मैडम को बुलाना, वाइफ को बुलाना और कहना आई लव यू, तू ही खा ले पूरा, मैं अचार के साथ खा लूंगा, दही के, लेकिन चिल्लाऊंगा नहीं, इरिटेट नहीं होऊंगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा, गाली नहीं दूंगा, परेशान नहीं होऊंगा। एक छोटे से करेले की सब्जी से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और दुनिया के चैलेंजेस में हम सफल होना चाहते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, हमारी काबिलियत पर बहुत बड़ा दाग है ये। हम छोटी छोटी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते और बड़ी बड़ी चीजों को, कॉम्पिटिशन को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं रिलैक्स होकर के। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी देखें। चलिए आपको मैं एक ये वीडियो दिखाता हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये वीडियो, ये एक एनिमल किंगडम का एक वीडियो है, ये एक एक्चुअली फिल्म है, और उसका जो सार है वो यही एक इंटेंसिटी, उसके बाद हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। ये एक जंगल है, जंगल में एक भालू का बच्चा है, बहुत मस्त है, एंजॉय कर रहा है, तब एक पैंथर, एक चीता आकर उसको खाने का प्रयास करता है, फिर देखना है वो बचने के लिए कितना इंटेंस होता है, फिर वो बचता कैसे। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें, एंजॉय करें, फील करें। ध्यान से देखिएगा, एक छोटू बेबी का बच्चा है, वो बहुत एंजॉय कर रहा है और ये शेर जो है उसको देख लेता, उसका खाना वो मस्त है और डेंजर। वो भालू का बच्चा भी उसको देख लेता, वो भाग रहा है अपने जीवन को बचाने के लिए, वो इंटेंसिटी जब जान पर बात आ जाती है तो। वो नदी, वो नदी पार करने का प्रयास करता है लेकिन वो पानी में गिर जाता है। उसको लगता है शायद वो बच गया है लेकिन वो मृत्यु उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। वो जो वाइल्ड कैट है वो उसके पीछे अभी भी लगा हुआ है। ये बेबी का बच्चा बहुत घबराया हुआ है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो कैसे बचेगा, लेकिन वो हर प्रयास कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। और ये इंतजार कर रहा है, वो बहते हुए आएगा और उसको पकड़ लेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, किनारे तक किसी तरह आ जाता है लेकिन वो उसके सामने ही है, दोनों में घनश्याम लड़ाई होती है। वो चिल्लाता है बहुत जोर से, और वो छोटू को लगता है उसके चिल्लाने से वो भाग गया है लेकिन उसके पीछे उसकी माँ दोस्तों, हर परेशानी से हमें हटाने के लिए हम आत्माओं का पिता परमात्मा, वो ईश्वर, वो खुदा दोस्त हमारे पीछे खड़ा हुआ है। बस वो आपके वो जो प्रोसेस को देखना चाहता है, मैं कितना इंटेंस हूं कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, आज के बाद गलत नहीं विचार करूंगा। मैं चाहता हूं इसी भावना में हम बैठें एक मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए, आराम से बैठें। मैं आपको कुछ विचार देने वाला हूं, उन विचारों में अपने आप को समाने का प्रयास करें, उस चित्र को देखने का प्रयास करें कि ब्रकुटी के बीच मैं चमकता हुआ एक मणि हूं, शुद्ध हूं, अच्छा हूं, शक्तिशाली हूं, ये सत्य है कि मेरे में कुछ कमी कमजोरियां भी हैं, कुछ अवगुण भी हैं, कुछ दोष भी है, कुछ वीकनेसेस भी हैं, लेकिन आज मैं बहुत इंटेंस होकर ये प्रण करता हूं कि मैं बहुत प्रयास प्रयास करूंगा इन कमी कमजोरियों को हटाने का। आज से मैं सदा मुस्कुराता रहूंगा, क्रोध, ईर्ष्या, डर, अनिश्चितता का भय, इन सब से मैं मुक्त बन रहा हूं। देखने का प्रयास करें एक दिव्य प्रकाश आपके सर के ऊपर है और उससे रंग बिरंगे किरणें आप आत्मा पे पड़ रही है। ईश्वर पिता आपसे कह रहा हूं, मेरे अति मीठे प्यारे बच्चों, आपका इस बुलंद हौसले को देखकर मुझे बहुत खुशी है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुमने हिम्मत का एक कदम बढ़ाया, मैं तुम्हें अपने गोदी में बिठा के लेके जाऊंगा। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बस हमेशा इस इंटेंस स्थिति में रहना कि कुछ भी हो जाए मैं अपने कमी कमजोरियों के वश नहीं होऊंगा। मेरा आंतरिक प्रोत्साहन बढ़ते जा रहा है क्योंकि खुदा दोस्त मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। जिसका साथी हो भगवान, उसका क्या करेगा आंधी तूफान। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। धीरे से आंखें खोलें, वापस इस हॉल में आ जाएं, स्थिति में आ जाएं कि आज से मैं सदा मुस्कुराते रहूंगा। दूसरी बात, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए सिर्फ अंदर वो इंटेंसिटी होना काफी नहीं है, नंबर टू उसका डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। इज इट टुवर्ड्स अ बेनिफिशियल गोल। आतंकवाद या आतंकवादी वो भी बहुत पावरफुल होते हैं लेकिन उनकी दिशा उल्टी होती है। क्या वो मुझे सुखदाई है और दूसरों को भी वो सुख प्राप्त कराता है या नहीं है? और इतना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम गलत दिशा के लिए हम बहुत जल्दी मोटिवेटेड हो जाते हैं और सही मार्ग के लिए हम मोटिवेटेड नहीं। झूठ बोलना, गुस्सा करना, गलत चीजों का सेवन करना, गलत कार्य करना, उन सब के लिए मनुष्य बहुत जल्दी एग्री कर जाता है, लेकिन सत मार्ग में, सत कर्म में, सत विचार में, सत भाषा में करने के लिए हमें बहुत मोटिवेटेड होना पड़ता है फ्रेंड्स। इसी के लिए उसकी दिशा को देखना बहुत जरूरी है और ईश्वर परमात्मा हमें बहुत सिंपल बात कहता है कि सही दिशा क्या है। सही दिशा वही है जिससे आपको सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की फीलिंग हो, शक्ति की फीलिंग हो और साथ साथ दूसरे को भी अगर उसकी फीलिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये दूसरा वीडियो दिखाता हूं, देखिएगा डायरेक्शन। और प्लीज अपने आप से ये प्रश्न पूछिएगा कि मेरे 24 घंटों में अगर जानवर ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम इतने गिर चुके हैं कि हम आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? और ये रियल है दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने इसको कैप्चर किया था। मैं चाहूंगा कि इसको आप बहुत ध्यान से देखें। इसमें भी एक वाइल्ड कैट है जिसको जैगुआर जैसा कहते हैं और एक मंकी है जिसको बबून कहते हैं और ये उसको पकड़ लेता है, मार देता है, उसको खाने के लिए पेड़ पर लेकर आता है और फिर क्या होता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत प्यार से देखें, डायरेक्शन को देखिए। एक कार्निवोरस एनिमल, एक खूंखार प्राणी में भी अगर इतना संवेदनशील हो सकता है तो हम इस श्रेष्ठ योनि में जन्म लेने वाले, मनुष्य जाति में जन्म लेने वाले छोटी छोटी बातों में दूसरों को दुख, अशांति, परेशानी कैसे कर सकते हैं? सर प्लीज वॉच, ये अंग्रेजी में है, मैं आपको बताते जाऊंगा। इसको लकदीमा कहते हैं, ये पर्टिकुलर टाइप का एक कैट है, वो एक अपना खाने के लिए एक बंदर को मार देता है। मेनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये निमित्त बन रहा है, उसको मार देता है वो। और उसको वो पेड़ के ऊपर लेकर आता है खाने के लिए। प्लीज देखिए, वो छोटा सा, वो जो बंदर के पेट में वो छोटा सा एक बच्चा है उसका, वो उसको देख नहीं पाता है। प्लीज देखिएगा अभी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और वो बंदर का बच्चा नीचे गिर जाता है। ये लकादीमा के लिए तो वन पे वन फ्री गिफ्ट होना चाहिए, लेकिन देखिए कैसे परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। वो उस जिसको उसने मारा था उसको छोड़कर ये बेबी के पास आ जाता है और देखो कैसे उसको प्यार करते हैं। अब उसके लिए ये बंदर के बच्चे को बचाना उसके लिए टारगेट हो जाता है। हाइनास होते हैं वो उसको मारने के लिए आते हैं, तो ये देखो ये उसको उठा के लेके जा रहा है, जबकि ये माँ नहीं है उसकी, और उसको ऊपर छोड़कर आता है और इन लोगों को भगाता है। वो आके देखो उसको ऊपर छोड़ के आ रहा है। और वो हाइनास वो माँ को लेकर चले जाते हैं और ये रात भर इस बंदर के बच्चे को देखना, क्या ब्यूटीफुल सीन है। एक सेकंड के लिए भी उसने उस बच्चे से अपनी नजरें नहीं हटाई। Most likely imprinting on his new surrogate mother. उसके मन में compassion, उसके मन में प्यार, उसके मन में उस बच्चे के लिए इतनी शुभ भावनाएं, वो गिर ना जाए। Lakshadima seems to be caught up in our own internal conflict. A young leopard at a confusing crossroads of life, torn between being a predator and an inquisitive cub. वो गिर ना जाए कहीं, कितना उसको कैसे बचाता है, कैसे उसकी पालना कर रहा है। शरीर की गर्मी देता है और थोड़े देर के बाद वो बंदर का बच्चा भी उससे चिपक जाता है। देखना वो चलकर उसके पास आता है। दोस्तों, अगर एक खूंखार शेर, कार्निवोरस एनिमल के मन में दया, करुणा, एक मातृत्व की भावना आ सकती है, तो क्या हम मनुष्य आत्माएं छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे के प्रति इतना नफरत, आज दुनिया का क्या हाल है। मैं चाहता हूं 2 मिनट के लिए इसी भावना को, मेरा जीवन का डायरेक्शन क्या है, शायद जीवन जीने के चक्कर में जीवन क्या है उसको मैं भूल गया हूं, 2 मिनट के लिए रिलैक्स होकर के बैठें, हम मेडिटेशन करेंगे। इंटेंसिटी के लिए पिता परमात्मा ने मुझे शक्तियां दी, डायरेक्शन के लिए निराकार शिव पिता परमात्मा मेरा टीचर है। महसूस करे भृकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा, और मेरे सर के ऊपर एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, मेरा टीचर, मुझ आत्मा का गाइड, मुझ आत्मा को सत्य मार्ग दिखाने वाला मार्गदर्शक,
आज मुझे रियलाइज हो रहा है जीवन का परम उद्देश्य क्या है, जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है। घर, परिवार, बिजनेस, ऑफिस सबको संभालते हुए शांति, आनंद, प्रेम, खुशी के साथ जीवन जीना ही जीवन का सत्य डायरेक्शन है। मैं भूल गया था कि जीवन में सुख शांति भी बहुत आवश्यक है। परमात्मा के किरणों की छत्र छाया में मैं आत्मा का अंधकार दूर होता जा रहा है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नजर आ रहा है। मुझे वो सब करना है जो जीवन निर्वाह अर्थ जरूरी है, लेकिन साथ साथ खुशी, आनंद, स्नेह और शांति को लेकर के करना है। थैंक यू माय स्वीट डिवाइन टीचर, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके बताए हुए मार्ग पर मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। अगर कोई मुझे दुख देता भी है, उन्हें मैं सुख और शांति दूंगा। वो गलत हैं, चलता है, लेकिन मेरा डायरेक्शन सदा के लिए अच्छा है और सही है। दूसरे भले मुझे माफ करें या ना करें, लेकिन आज से मैं उन्हें माफ करूंगा, क्योंकि मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। दूसरे अगर मुझे बुरा भला कहें, वो बीमार हैं, लेकिन मैं आत्मा हेल्दी हूं, मैं उन्हें माफ करूंगा, मैं उन्हें शुभ भावना और शुभकामना दूंगा। कितना अच्छा लग रहा है इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स के आधार से जीवन जीने का। धीरे से आंखें खोलें, तीसरी बात की ओर अपने मन को लेकर के आए। आंखें खोलें, वंडरफुल। इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स के लिए जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंस, लगातार हमेशा करते रहना। एक बार किया, दो बार किया, एक दिन किया, फिर अगर हम भूल गए तो फिर उससे हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स में वो ताकत नहीं आ सकती है। और परसिस्टेंस के लिए कहते हैं हाउ लॉन्ग आई ट्राई, इंटेंसिटी के लिए हाउ हार्ड आई ट्राई, डायरेक्शन के लिए टुवर्ड्स अ बेनिफिशियल गोल, और तीसरा है जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंस, कितना लगातार मैं ये करता जा रहा हूं, आज से लेकर अंत समय तक मैं लगातार इन बातों को अपने जहन में रखूंगा, अपने बुद्धि पे रखूंगा और अटेंशन के साथ इन बातों को, अपने दिव्य गुणों को धारण करते जाऊंगा। क्योंकि जब तक हम लगातार नहीं करते हैं तो फिर हमारे अंदर वो जो शक्ति है वो फिर कम होने लगती है। हम शायद फिर अपने ओल्ड बिहेवियर पे आ जाते हैं, नवीनता के आधार से नहीं जी पाते। मैं चाहता हूं ये तीसरा और अंतिम वीडियो आप देखें और समझने का प्रयास करें कि कैसे लगातार होने से मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता है। ये एक ओलंपिक गेम्स का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, रियल है, 1992 अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स बार्सिलोना ओलंपिक्स, और मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। ये भी अंग्रेजी में है लेकिन मैं आपको प्लीज वॉच। ये व्यक्ति का नाम डेरेक है, इज फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इमोशनल है, आप देखें, अपने आप के साथ रिलेट करें। 1992 400 मीटर्स रेस बार्सिलोना समर ओलंपिक्स में, और वो जीतने वाला था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, लेकिन अचानक 200 मीटर के बाद उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाता है। हाउएवर डिसअपॉइंटमेंट कम्स अबाउट 250 मीटर फिनिश से पहले वो दौड़ नहीं पाता है और वो बीच में ही लड़खड़ाने लगता है, वहीं बैठ जाता है। उसका जो सपना था गोल्ड मेडल का, his hamstring tore, he hobbled into a halt और फिर दर्द में वो जमीन पर गिर जाता है। गोल्ड मेडल जीतने वाला वो 4 साल जो इंतजार कर रहा था, स्ट्रेचर पे लोग उसको आते हैं उसको उठाकर लेकर जाने के लिए, एंड ही न्यू ही हैड टू डिसाइड। उसको पता था मुझे क्या करना है अभी। डिस्पाइट द पेन, वो दर्द के बावजूद वो खड़ा हो जाता है, वो लंगड़ाने लगता है, लेकिन लंगड़ाते हुए भी वो लोगों को कहता है मुझे हाथ मत लगाओ, और वो लंगड़ाते हुए वो अपना बाकी 250 मीटर का जर्नी कंप्लीट करने लग जाता है। सडनली अ लार्ज मैन, एक बहुत वो क्राउड में से एक बहुत बड़ा सा एक व्यक्ति जो होता है वो सिक्योरिटी वालों को हटा करके इसकी तरफ भागने का प्रयास करता है। इसको दर्द हो रहा है वो 250 मीटर, वो जो व्हाइट शर्ट पीछे पहना है वो सिक्योरिटी वाले उसको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये पीछे से उसके पास आता है। वो समझ नहीं पाता है ये व्यक्ति कौन है, लेकिन जब पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे पता चलता है वो इसका पिता है, और इसका पिता उसको कहता है यू डोंट हैव टू डू दिस, ही टोल्ड द वीपिंग सन, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है ये। उसका बेटा कहता है नो डैड, मुझे ये करना ही है। वेल देन रिप्लाइड द डैड, अगर तुमको ये रेस कंप्लीट ही करना है तो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू फिनिश दिस टुगेदर, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। और वो पिता उस बच्चे को अपने गले से लगा लेता है, उसका सर अपने कंधे पे रखता है, तुम्हें अकेले करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। शॉर्टली बिफोर द फिनिश लाइन वो पिता अपने बच्चे को छोड़ देता है। 65,000 की लोग वो इवेंट को देखते हैं कि किस प्रकार पिता अपने लंगड़ाते हुए बेटे को फिनिश लाइन पर लेकर जाता है। दोस्तों, हम सब आत्माओं का पिता, वो ईश्वर, वो खुदा दोस्त, वो अल्लाह ताला, वो गॉड इंतजार कर रहा है अपना कंधा देने के लिए कि मेरे मीठे प्यारे बच्चों, मैं हूं तुम्हारे साथ, इफ यू वॉन्ट टू डू इट वी विल फिनिश इट टूगेदर, आपको अकेले करने की जरूरत नहीं है। हाउ परसिस्टेंट आई एम कि कैसे भी परिस्थिति में मैं अपने जीवन की इस यात्रा को गुस्सा, दुख, अशांति के चक्कर में खत्म नहीं करूंगा, मुझे जीतना है। ऐसे समय पर वो ईश्वर परमात्मा आकर कहता है बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, इसी फीलिंग में एक मिनट अपनी आंखों को बंद करें, रिलैक्स होकर के बैठें, देखने का प्रयास करें, वो पिता मेरा सत्य गुरु है, वो मेरा पिता है, वो मेरा टीचर है, और वो मेरा गुरु भी है। अपने को आत्मिक स्थिति में पाएं, फील करें कि वो दिव्य चमकता हुआ सितारा मेरे सर के ऊपर है, उसका वरद हस्त मेरे सर माथे पर है, और वो सतगुरु कह रहा है मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें अपनी सर्व शक्तियां देता हूं कि तुम कभी भी इस सत मार्ग को, इस दिव्य जीवन को, ये मानव जीवन को कभी भी छोड़ना नहीं। कुछ भी हो जाए, अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए लगे रहना, परसिस्टेंट बने रहना, अंत समय तक इसको लगातार कंटिन्यू करना। मैं तुम्हें अपना कंधा दूंगा, मैं तुम्हें अपना हाथ दूंगा, मैं तुम्हें अपनी गोदी दूंगा, मैं अपने पलकों में तुम्हें बिठाकर तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स, वो परमात्मा मेरा पिता, मेरा शिक्षक, मेरा सतगुरु, मेरे इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स के लिए मेरे साथ हैं। धीरे से आंखें खोलें, धीरे से आंखें खोलें, अपने हाथ को रब करें, अपने पूरे चेहरे पे लगाएं, माथे को लगाएं, गाल को लगाएं, आंखों को लगाएं, नाक को लगाएं, अच्छी तरह रब करें, गुड न्यूज, फेयर एंड लवली लगा दिया। आज से मैं और आप सदा फेयर हैं, खुद भी फेयर, दूसरों के लिए भी फेयर, सदा लवली हैं, सदा लवली हैं मन से। करेंगे, खुश रहेंगे। चलिए बस एक लास्ट बात बताता हूं, 5 मिनट और आपका लूंगा। आपके पास 3 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, तीनों में से कोई भी ऑप्शन को आप टिक कर सकते, किसी दो को भी कर सकते, किसी एक को भी कर सकते। ऑप्शन दूं? या पहला ऑप्शन, खुशी के लिए जीना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, पैसों के लिए जीना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, पोस्ट पोजीशन अवार्ड रिवॉर्ड के लिए जीना चाहिए। किसके लिए जीना चाहिए? जो खुशी के लिए जीना चाहते हाथ ऊपर उठाएं। क्या बात है, आप लोग को सब आता है, ठीक है ना, गुड। आप है ना, यहां जाने से पहले एक पेपर मैं आपको दूंगा, उसमें अपना नाम, एड्रेस और फोन नंबर लिखकर मुझे देना। देंगे सब लोग? वेरी गुड। क्यों मैं आपसे मांग रहा हूं? क्योंकि मैं आपके घर आना चाहता हूं। आ जाऊं? पक्का? पक्का, वंडरफुल। मैं क्यों आना चाहता हूं वो बता दूं? फोन करके आऊंगा, चाय पानी पिलाएंगे। सब लोग बोल रहे आप रहने दो। खाना वाना खिलाएंगे? खिलाएंगे, वेरी गुड सर। सर बोलते आ जाना, उनको क्या, बहन को बनाना पड़ता है वो, मतलब आ जा तो अपने को क्या, मैडम ही बनाने वाली, टू स्मार्ट है सर आप, ठीक है। मैं क्यों आना चाहता हूं वो मैं बता देता हूं, क्योंकि आप खुशी के लिए जीना चाहते हैं। मैं आऊंगा तो आप अपना चेकबुक रेडी रखना, अपना हीरे मोती सोना चांदी प्रॉपर्टी के पेपर सब रेडी रखना, मैं बैग भर के लेकर जाऊंगा और ढेर सारी खुशियां देकर जाऊंगा, क्योंकि आपको खुशी के लिए जीना, पैसे तो चाहिए ही नहीं। एक बार और सवाल पूछ लो, क्योंकि जब बच्चा हार जाता है तो बोलता ये वाला नहीं मानेंगे, अगली बार से मानेंगे, ठीक है ना। एक बार और पूछता हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, नाम मान शान के लिए जीना चाहिए, तीनों को भी टिक कर सकते हैं। किसके लिए जीना चाहिए? जो दो के लिए जीना चाहते जरा हाथ ऊपर उठाएं, खुशी और पैसे। क्या बात है, क्या बात है। एक एक छोटी बच्ची है, वेरी गुड, वही सबसे अच्छी है। पता है वो क्या क्या समझती है? हाथ के ऊपर उठाया, पता नहीं टकलू अंकल सच में आ जाएगा तो रहने दे भैया, तू घर पे रहे, हमको अपना पैसा चाहिए, घर परिवार सब चाहिए। गुड, चलिए बहुत अच्छा। आपका उत्तर है ना गलत है दोस्तों, पता है क्यों? उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही गलत था। हाँ तब तो ठीक है, नहीं तो तेरे को जाने भी नहीं देते यहां से, हम गलत कैसे हो सकते हैं, राइट। प्रश्न को सुधार दूं, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुशी के लिए जीना चाहिए या खुशी से जीना चाहिए? जो लोग खुशी के लिए जीना चाहते हैं वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। गौतम बुद्धा को भी बुद्धा बनने में समय लग गया था, आपको तो एक सेकंड में इतना अच्छा ज्ञान आ गया। कितना जल्दी आप लोग पलटी खाते हैं, पहले तो एक 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 बोल रहे थे और अभी कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। खुशी से जीना और खुशी के लिए जीने में थोड़ा सा अंतर है, पता है क्या अंतर है? एक मैंने छोटे बच्चे को पूछा, छोटू ने कहा अंकल बहुत आसान है। मैंने कहा क्या आसान है? छोटू कहता है खुशी के लिए जीने का मतलब है अभी खुश नहीं हूं, वो तो कुछ होगा तब, जैसा मैं चाहता हूं तब, जैसा मेरे कंफर्टेबल फेवरेबल सिचुएशन होगा तब, और तब तक दुखी अशांत परेशान नहीं। दोस्तों आज से सदा खुश, ठीक है। आप लोग आए हैं, रिटर्न जर्नी का अभी भी वेटिंग लिस्ट टिकट है, अपने साथी को कहना मैं तेरे साथ बैठ के जाऊंगा, ठीक है ना, हम एडजस्ट करके जाएंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करना, इरिटेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। कर सकते हैं? पक्का? तो आज से इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स है 100%, है ना। चलिए लास्ट एक शायरी सुनाता हूं, फिर हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स। जीवन क्या है ये किसी ने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूं। जीवन एक डैश है, जीवन एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। जीवन एक डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, जीवन एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी, एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। जीवन एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी, एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। उस तस्वीर में तेरी मुस्कुराहट, उस तस्वीर में तेरी मुस्कुराहट तेरी छवि बन जाएगी, इसलिए जीवन की इस बगिया में सदा मुस्कुराते रहो। पता नहीं कौन फोटो खींच रहा है, राइट? इसलिए जीवन की इस बगिया में सदा मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके जीवन में सदा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस रहे, आपके लिए और आपके परिवार में भी रहे। यहाँ के हर सत्र को आप बहुत प्यार से एंजॉय करें, यहाँ से बहुत कुछ सीख कर समझ कर जाएं और अपने जीवन में इंक्लूड करें। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू सो मच गिरीश भाई। गिरीश भाई मैं क्या कहूं, मैंने अभी जस्ट आपको सुनते हुए एक टर्म क्वाइन किया है। भाइयों आपने सुना होगा एजुकेशन और सुना होगा एंटरटेनमेंट, और उन दोनों को मिलाकर के एडुटेनमेंट सुना होगा। लेकिन इस सत्र को सुनते हुए हमें ऐसा लगा कि न सिर्फ एजुकेशन, न सिर्फ एंटरटेनमेंट, लेकिन एनलाइटनमेंट। तो आज मैंने एक शब्द सोचा है, एड्यूलाइटनमेंट। तो आप सभी को एड्यूलाइटनमेंट मिला, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट प्लस एनलाइटनमेंट। वाह क्या बात है। तो वैसे तो मैं लैंड ऑफ बुद्धा से बिलोंग करता हूं, वेयर बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट, द फेमस बोध गया। लेकिन माय फ्रेंड गिरीश, मैं तो इनको मॉडर्न डे बुद्धा भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि इतनी सारी बातें और इतने वंडरफुल ढंग से, इतने हल्के वे में इतनी गहरी बात आपने कह दी है, हमें लगता है कि इट विल गो अ लॉन्ग वे इन गिविंग अस द इम्पीटस फॉर इंट्रिंसिक ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन।